Welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. Aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur charcha karenge. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य. मिश्रा भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू राजेश.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स स्लंप नियरली 2%, सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 1400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23400. India's retail inflation increases to 3.48% in April this year, and global crude oil prices continue upward trend.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 2% की गिरावट, सेंसेक्स में 1400 अंकों से अधिक का नुकसान, निफ्टी 23400 के स्तर से नीचे फिसला. अप्रैल माह के दौरान घरेलू खुदरा महंगाई दर बढ़त से 3.48% दर्ज, और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. लगातार चौथे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.83% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा. बीएसई मिडकैप सूचकांक में 2.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.2% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई. कारोबार की शुरुआत में आज बाजार मंदी के साथ खुले और वैश्विक बाजारों के संकेतों से बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स स्लम्प्ड फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन टुडे अमिड वीक ग्लोबल क्यूज. The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points or 1.83% to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5%, while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%. Earlier, the markets opened lower and continued to witness persistent selling pressure throughout the trading session.
सेंसेक्स पैक की 30 में से 29 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ. गिरावट वाले प्रमुख कंपनियों में टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट 4.4%, एचसीएल टेक 4.1% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि स्टेट बैंक का शेयर मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा.
ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ वाज सीन अक्रॉस ऑल सेक्टोरल इंडेक्सेस एट द बीएसई. Among the top losers, realty nosedived 4.2%, IT lost around 3.7%, and focused IT dropped 3.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,412 companies declined, 869 advanced, and 129 remained unchanged.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 98.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. मिश्रा भट्टाचार्य, किस तरह से आंकते हैं लगातार 4 दिनों से शेयर बाजार में गिरावट का दौर, और तकरीबन चार दिनों में 4% के आसपास बाजार में नुकसान हो चुका है। आने वाले दिन कैसे नजर आते हैं, क्या यह दबाव घरेलू है, क्या यह दबाव वैश्विक है, या दोनों का मिला जुला रुझान?
इस सवाल का जवाब आपने यही दिया है, ये घरेलू दबाव भी है और वैश्विक जो रुझान जो है उसका भी ये कारण है। वैश्विक जो युद्ध विरोधी की जो एक आशा थी, वो आशा की किरणें थोड़ी दूर चली जा रही हैं, क्योंकि अब जो फोकस जो है वो ट्रंप साहब का चाइना विजिट के ऊपर गया है। अब चाइना में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, ताइवान के साथ क्या समझौता होता है चाइना के जरिए, उसके ऊपर नज़र टिका हुआ है। और इस तरफ ईरान की जो है युद्ध विरोधी की जो आशाएं ये थी वो सॉर्ट ऑफ एवेपोरेट करने को लगी हैं। तो और तेलों के दाम उसी हिसाब से बढ़ भी गए हैं। तो एक तो हुआ कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट हुआ है, और दूसरी ओर ये हुआ है कि जो डोमेस्टिक वातावरण में सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है पिछले दो दिनों में कि सख्त कमर कसने की ज़रूरत है, ऑस्टेरिटी ड्राइव की ज़रूरत है, विदेश यात्रा में एक अंकुश लगाना ज़रूरी है, और जो सोना खरीदने के ऊपर थोड़ी बहुत जो चाहत जो है उसको में उसमें कमी करनी चाहिए। तो ये सारे वातावरण से
मतलब जहां जहां विदेशी मुद्रा सीधे तौर पे इन्वॉल्व है वहां बचना चाहिए।
देखिए करीबन हमारी जो 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 हम आयात करते हैं उसकी एक तिहाई आयात चार चीजों से होती है। एक तो होता है सोना, दूसरा होता है क्रूड ऑयल, तीसरा होता है जो खाने का तेल, और चौथा होता है फर्टिलाइजर उर्वरक चीजें। तो ये चारों चीजों में मैं समझता हूं कि किस तरह से जो विदेशी मुद्रा का कुछ जो संचय कर सके हम, उसके लिए सरकार की पूरी तरह से ये मनोवासना है कि वो होनी भी चाहिए कि ये कंट्रोल चेक किया जाए। उसका मतलब ये है क्या कि रिटेल प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे, जो तेलों के कंपनियों की जो जो ऐलान गए हैं कि पेट्रोल का दाम में 20 रुपये प्रति लीटर की शायद कमी है इस वक्त, और जो डीजल में है वो पहले तो कह रहे थे 100 रुपये की, अब कह रहे हैं 40 रुपये की, पर जो ऐलान जो हो रही है 30,000 करोड़ की जो तेल कंपनी की जो मंथली घाटा जो है उसका भी एक इम्पैक्ट हो रहा है। तो सब मिला के मार्केट को ये महसूस हो गया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो हम कह रहे थे वो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट प्राइस के ऊपर आने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आप देखा कि मार्केट में सब स्टॉक प्राइसेस नीचे गए हैं, करीबन जैसे आपने कहा कि 1.9% की गिरावट हुई है, करीबन 12 लाख करोड़ की जो जो चपत लगी है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट सेंसिटिव है। सरकार ने ऐलान किया है कि जो रॉयल्टी रेट्स हुए जो ऑयल कंपनीज के ऊपर ONGC OIL के ऊपर उन्होंने कट कर दिया, सरकार ने काट दिया है। उससे आप देखेंगे सिर्फ ऐसी सेक्टर है आज की मार्केट में ONGC और OIL की शेयर, ONGC की जो स्टॉक प्राइस है वो 5% बढ़ गई है, OIL की भी करीबन 3-4% बढ़ गई है। इसका मतलब मार्केट बहुत ही बेताब बेसब्री से देख रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक तरफ तो ये सब जो जो चीजें मैंने कही आपको उसके लिए मार्केट नीचे गया है, पर यह भी है कि तेल कंपनियों की जो थोड़ी बहुत जो उनकी इंक्रीज जो होगी अर्निंग्स में उनके घाटे में या थोड़ी बहुत रोक लगेगी उसके लिए भी मार्केट ने उसका एक सिग्नल दे दिया है।
मिस्टर भट्टाचार्य, शार्प डिक्लाइंस ऑफ 2% टू 4% वर रजिस्टर्ड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, PSU, बैंक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, while the defensive sectors offered relative cushions during today's and yesterday's sell-off. Now, what does the rotation from cyclicals to defensive signal about institutional investor conviction in India's growth story? And is this a temporary risk-off move or the beginning of a deeper structural correction?
I don't think it is a structural correction. What is happening is a certain reassessment of the consumption sector's potential demand. Now, what is the big challenge that the Indian economy, or for that matter any emerging economy, will have to face in the current situation is that there was a supply shock, in the sense that oil availability was becoming more difficult. Now add to that a demand shock, because the prices will have to be, increases will have to be passed on, and that will definitely impact demand and therefore consumption. So all the consumption stocks will have to weather the imminent the burden of higher prices.
Okay.
And it is the consumption, the particularly the FMCG sector, where the demand is elastic. Instead of buying two soaps, you may like to buy only one soap if the prices
That's
go up.
That's the advice that you would give to the...
If you are looking at sectors which are the, let's say, the food sector, they are more sustainable, more durable. But if it is long-term, consumer goods, which is not fast-moving, durable goods, consumer durable goods, there I would say the hit will be more. Okay. Whereas in the fast-moving items, the hit will be far less. So if you are brave enough to, operate in this highly uncertain, volatile market, instead of tightening your belt and sitting tight with your investments and enjoying the security of wherever you are, then I would say that look at only those sectors which are going to be less impacted by this upheaval.
So what I hear you say is that the investors should look for positive nuances, like the one that you mentioned about royalty. Okay, so they should look for such things. And
Absolutely.
The common man
yeah.
should look at perhaps not buying four slabs of anything, instead going for two.
Absolutely. I mean, for example, let's say the oil company stocks. ONGC is an oil producer. OIL is an oil producer. But take the oil refining and the marketing companies. They have taken already a big hit. So they are already reflecting a weakness in their prices. But the moment they are allowed or they increase their prices. So if you are a punter, then probably you would take a decent position in these oil refining company stocks at this point in time.
Okay. So we do have the oil story a bit later in the program. If the Hormuz remains partially closed for another 60 to 90 days, what would be the cascading effect on the Brent crude, which is already, I think somewhere near 105, if I'm not mistaken, or to 107 barrels today? And what threshold price would trigger a full-blown current account crisis for India?
Well, first of all, we need to understand that almost 46% of our total crude oil and petroleum products come through the Strait of Hormuz. The share, almost half of your requirements are impacted by this bottleneck right now. We need to see to what extent the Russian oil, to what extent the American oil,
yep.
to what extent the Venezuelan oil can meet the gap. So I think we have the strategic petroleum reserves to take care of us for about 50-60 days. But beyond a certain level, if this stalemate continues, it will be a very, very difficult situation to deal with, I think, which is what the Prime Minister the other day was talking about. So therefore, we have to take into account the fact that oil is a critical input for a variety of industries. Take the agriculture sector, take the fertilizer. And what we are not right now talking about, the fiscal impact of the entire crisis. The fiscal impact of this crisis will be reflected very soon during the year, because of the fertilizer subsidy bill, because of the revenue collections, because the government has already cut taxes on petrol and diesel.
Mr. Bhattacharya, we will discuss further on this as we go along. Mm-hmm. In the meantime, I think we do have a story, Amit, on CPI.
जी नफेड़ा लेते हैं खुदरा मुद्रास्फीति पर. अप्रैल के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर मामूली बढ़त से 3.48% दर्ज हुई. इसे पिछले माह मुद्रास्फीति की दर 3.4% थी. लगातार चौथे महीने खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़त दर्ज हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार आधार वर्ष में बदलाव के बाद मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त के साथ 3.74% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर मामूली बढ़त से 3.16% दर्ज हुई. इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 3.87% से बढ़कर 4.2% हो गई. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बावजूद घरेलू महंगाई दर रिजर्व बैंक के निर्धारित सीमा में ही दर्ज हुई है. महंगी होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम आभूषण, टमाटर और नारियल जैसे उत्पाद प्रमुख रूप से रहे. हालांकि अप्रैल के आंकड़े हैं, क्या हमें ये मानना चाहिए कि अप्रैल के आंकड़ों से हमें इस बात का आभास हो जाता है कि मई का जो महीने के बाद हम जो खासतौर पे जो रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे वहां पे शायद हमें थोड़ा सा ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आया, ज्यादा
आपने एकदम सही कहा. जो जो इस जो डेटा जो आई है वो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट जो हुआ है उसको कैप्चर नहीं किया है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस समय जो 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 रिटेल जो पेट्रोल एंड डीजल है उनके दाम भी बढ़े नहीं हैं. तो और वो एक ऐसी चीज है जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट में बहुत काम वो करती है, इम्पैक्ट करती है. तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं और जो हम बात हमने अभी डिस्कस की है उसके साथ बहुत बड़ा अंतर है
जी.
तो अप्रैल का जो ये 3.48% का जो रिटेल खुदरा जो मुद्रास्फीति आपने बताया है
जी.
ये जो हमारी जो क्राइसिस की जो जो आकार जो होने वाली है उसको नहीं दर्शाती है. मैं समझता हूं कि अगर दाम बढ़े और उसके साथ साथ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट के साथ साथ बहुत चीजों की जो पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल करते हैं उनकी भी दाम बढ़े तो मैं समझता हूं तब देखना पड़ेगा कि वो आरबीआई की जो 4% की जो टारगेट रेट जो है उससे बढ़ती है. मेरा मानना है कि आरबीआई का जो अपना ही जो अनुमान जो है वो उसमें बढ़ने की पूरी तरह से हम
आशंकाएं हैं. एक चीज यहां पे मैं जानना चाहूंगा विशेषज्ञ एक्सपर्ट के तौर पे, अगर जिस तरह से राजेश ने जिक्र किया अगर हॉर्मुज वाला संकट हल हो जाता है तो भी हमको इस तरह की महंगाई के आंकड़ों से पार पाने में कितना समय लग सकता है?
देखिए अगर मान लीजिए ये हॉर्मोन्स की जो समस्या है कल खत्म होती है तो मैं मानता हूं कि इसकी जो प्रोलॉन्ग जो इम्पैक्ट होती है करीबन एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक चलेगी. क्योंकि ये चीज इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि जो जो रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने रिफाइनरीज के पास इतना तेल उनके टैंक्स में आ गया है कि उन्होंने उन्होंने एक समय आ गया है कि वो बहुत करीब हैं उस समय के जब उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा शायद. और जिस दिन वो बंद करें उसका मतलब है कि उसकी जो साइकिल होती है वो एक बार अगर बंद कर दें तो वो पूरी साइकिल वापस लाने में बहुत समय लगता है. और ये चीज जो क्लियर होने माइनिंग क्लियर होने में तो 6 से 8 महीने की समय मिनिमम ये क्लियरेंस का लगेगा. मतलब तो आज की तारीख में ठीक होगा तो 6 महीने समझ लीजिए उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स तक रहेंगे.
तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको अपने अपनी
कमर कस लेनी है
और कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना, शायद अगर खर्च के हिसाब से थोड़ा सा कम करना है चाहे वो खाद्य तेल हो चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो चाहे विदेश यात्राएं हैं चाहे सोने के प्रति ललक हो उसको तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. क्या इन सब चीजों से हम मान सकते हैं कि फौरी तौर पर सही लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है खासतौर पर सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है?
देखिए जो जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं मानता हूं कि एक अच्छी एक उन्होंने एक एक मैसेज दिया है. पर उसके साथ साथ जो पॉलिसी ऑप्शंस जो हैं उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए
जी.
वो पॉलिसी ऑप्शंस पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ाना, गोल्ड के ऊपर क्या करना कंट्रोल करना चाहिए या रेमिटेंसेस के ऊपर क्या करना चाहिए, सरकार को जो उचित समझा है उनको करना चाहिए. और ये पॉलिसी ऑप्शंस की बहुत सख्त जरूरत है. सिर्फ लोगों को एहसास दिलाना, कमर कसने
अपील के साथ
अपील के साथ कुछ तुरंत कुछ पॉलिसी एक्शन की बहुत सख्त जरूरत है।
नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पे। एशिया बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक तथा हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की मामूली गिरावट से बंद हुए। हालांकि जापान का निकेई 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी ही नजर आई। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% से 1.3% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
The benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq composite closed at record highs yesterday, supported by technology stocks. This happened despite a rise in oil prices after US President Donald Trump rejected Iran's latest proposal to end the war. The S&P 500 advanced 0.2% to 7,413. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2% to close at 49,704. The Nasdaq Composite Index added 0.1% to 26,274. Meanwhile, investors will closely watch the CPI data, corporate earnings and a high-stakes meeting between the leaders of the US and China scheduled for this week. What is your expectation from the US-China talks, which is scheduled to happen next week? And what good or bad can it bring for the world economy?
Well, the overt expectations which we all see is what kind of arrangement the Chinese and the US reach on how to treat Taiwan and Taiwan's ambitions, aspirations. There is expectation that probably Mr. Xi and Mr. Trump will reach an agreement by which Taiwan's aspiration, genuine aspiration, legitimate aspirations are addressed and taken care of. But the unstated expectation in this thing is to what extent Mr. Trump is influenced and persuaded by Mr. Xi to find an early resolution of the Strait of Hormuz crisis. Remember, China is among those countries who are very, very badly affected by the Strait of Hormuz blockade. One can expect that probably this discussion will also try to find an early solution to the Strait of Hormuz problem.
Okay, they're meeting on May 13 on 2:15, and they will cover trade, Taiwan, Iran and rare earths simultaneously. According to what is the probability that geopolitical fault lines that we are discussing about the US, China, Iran compound into a multi-front crisis that reshapes actually global supply chains irreversibly?
I have a feeling that given the political calendar in the remaining months, my reading is that early solution will have to be found out by them, because both Mr. Xi as well as Mr. Trump have domestic politics to also to be taken care of. So I don't expect any further escalation, but on the contrary, there is a slim hope that there may be some resolution on the cards.
Okay. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be they maybe economic, technological or geopolitical. Speaking at the Confederation of Indian Industry Annual Business Summit 2026 in New Delhi, he stated that the country has never buckled under pressure and has always emerged stronger during challenging times.
The world today, with a fragmented geopolitical and business situation, is facing a crisis every day. But look at the India story within this crisis. Our economy remains robust, very strong fundamentals. The IMF says if you have 8 to 12 months of foreign exchange reserves to cover your imports, you are considered in a very strong position. We have 11 months cover on our imports. We've had a record year in exports. We've exported, the final figure will be out in a couple of days, but roughly $863 billion, which is an all-time high. And our trade deficit, goods and services together, is less than our annual remittance.
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that while many nations have faced skyrocketing prices and fuel shortages over the last few months, India has managed to keep domestic prices relatively stable. The minister said this while addressing CII Annual Business Summit 2026 in New Delhi.
Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
So, Mr. Bhattacharya, the Commerce and Industry Minister said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, and the Petroleum and Natural Gas Minister assured that no matter what, we have given relatively stable supply to the consumers. So that it does very good to the sentiments of the people.
Indian economy is in a robust state right now. There's no doubt about it. And India has managed the crisis quite competently so far. But as I said, that the time has come where we need to undertake domestic policy reforms to convert this challenge into an opportunity for sustaining growth and preventing disruption.
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा है कि सरकार ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के साथ साथ देश में उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम करने की दिशा में काम किया है. श्री मांडवीय ने नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई व्यापार वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में अगली पीढ़ी के श्रम सुधार, उद्योग विकास और रोजगार सृजन को गति देना विषय पर संबोधित कर रहे थे.
Global crude oil prices rose more than 3% today as differences between the US and Iran on a proposal to end the conflict in West Asia pushed supply concerns back into the spotlight. Brent crude was trading 3.2% up at $107.53 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 3.3% up at $101.30 per barrel when reports last came in. So, Mr. Bhattacharya, what, according to you, should India be doing now that we just talked about India managing it very well, but going forward, what else?
Going forward, we have to transition to greater use of renewable energy. Also, projects to gasify coal and bring them into use. And of course, we have to push greater usage of the little bit of surplus capacity that we have in the power sector.
So my question is, how sustainable is India's import bill at these elevated prices?
Well, you know, as I said, that there are four items which account for your total, one-third of your total import bill. And the crude oil and the petroleum products, almost 88% of your total requirements are met through imports. Okay. So clearly, we have to reduce that dependence. And reducing that dependence is certainly one of the ways of going forward.
Okay. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading flat at 1,54,330 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.9% lower at 2,76,050 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना मामूली गिरावट से 1,53,605 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 1.3% के नुकसान से 2,74,815 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. मिश्र भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
नमस्कार.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Benchmark domestic indices slump nearly 2%. Sensex declines over 1,400 points. Nifty settles below 23,400. India's retail inflation increases to 3.48% in April this year. And global crude oil prices continue upward trend. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.